लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आरती याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित सेंट पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 22 नवंबर को ख्रिस्त राजा महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बुंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
ओजी सेलिब्रियामो La solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, con la quale si chiude l'anno liturgico e la grande parabola in cui si dispiega il mistero di Cristo, tutto l'anno liturgico.
Oggi siamo il mondo del Maharaja, il nostro Prabhu Gesù Cristo, che stiamo celebrando il Maharaja, con il quale la Pujan Paddhati Varsh si conclude. महान दृष्टांत में पूरे साल की धर्म विधि में ख्रिस्त का रहस्य प्रकट होता है। वे इतिहास के आदि और अंत हैं, आरंभ और पूर्णता हैं, और आज की धर्म विधि अंतिम समय पर ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात अंतिम लक्ष्य पर। इतिहास के अर्थ को इसकी चरम सीमा को अपने सामने रखकर समझा जा सकता है, और इसी को मत्ती इस रविवार के सुसमाचार पाठ में रखते हैं। पृथ्वी पर उनके जीवन के आखिरी समय में अंतिम न्याय के दिन में वे यीशु के भाषण को प्रस्तुत करते हैं। उनको जिन्हें लोग दंड देंगे, वे वास्तव में सर्वोच्च न्यायकर्ता हैं। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में यीशु इतिहास के प्रभु को दिखलाएंगे, ब्रह्मांड के राजा को, सभी के न्यायकर्ता को। किंतु ख्रिस्त विरोधाभास है कि न्यायाधीश एक क्रूर शासक नहीं बल्कि एक चरवाहा है, नम्रता और दया से पूर्ण। यीशु वास्तव में अंतिम न्याय के इस दृष्टांत में चरवाहे की छवि प्रस्तुत करते हैं। वे नबी एजेकेल की छवि को लेते हैं, जिसमें उन्होंने लोगों के हित में इसराइल के बुरे चरवाहों के खिलाफ ईश्वर के हस्तक्षेप पर भविष्यवाणी की थी। वे क्रूर थे, भेड़ों को खिलाने के बदले वे खुद को भरना पसंद करते थे, इसलिए स्वयं ईश्वर अपने भेड़ों की देखभाल अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करते हुए करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
Questa promessa di Dio per il suo popolo si è realizzata pienamente in Gesù Cristo, il pastore.
अपनी प्रजा के लिए ईश्वर की यह प्रतिज्ञा यीशु ख्रिस्त में पूरी होती है। वे ही भले चरवाहे हैं जो स्वयं कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूँ। आज के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, न केवल शाही चरवाहे के रूप में बल्कि खोए हुए भेड़ों के साथ भी। हम उसे दोहरी पहचान कर सकते हैं। राजा चरवाहा यीशु अपने आप को भेड़ों के साथ रखते हैं, अर्थात सबसे निम्न और जरूरतमंद भाई बहनों के साथ, और न्याय के मापदंड का संकेत देते हैं जिसको उन लोगों को ठोस प्रेम से देने अथवा इनकार करने के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि वे स्वयं एक न्यायकर्ता उन सभी में उपस्थित हैं। वे न्यायकर्ता हैं, ईश मानव हैं, किंतु वे गरीब भी हैं, छिपे हुए हैं। वे गरीब व्यक्ति में उपस्थित हैं, जिसका जिक्र यहाँ है। यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया वह मेरे लिए किया। अर्थात प्रेम के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा, भावना के आधार पर नहीं, कार्यों के आधार पर, करुणा के आधार पर, जिसको सामीप्य और देखभाल के द्वारा प्रकट किया जाता है।
Io mi avvicino a Gesù presente nella persona dei malati,
क्या मैं अपने आप को बीमार, गरीब, पीड़ित, कैदी व्यक्ति में अथवा न्याय के भूखे और प्यासे लोगों में यीशु के करीब लाता हूँ, उनमें उपस्थित यीशु के पास आ पाता हूँ? यही आज का सवाल है। इसलिए प्रभु दुनिया के अंत में अपनी भेड़ों की समीक्षा करेंगे और वे ऐसा न केवल चरवाहे की ओर बल्कि भेड़ों की ओर से भी करेंगे जिनके रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, और वे पूछेंगे, क्या आप मेरे समान चरवाहे रहे? क्या तुम मेरे चरवाहे रहे जब मैं जरूरतमंद व्यक्ति में उपस्थित था अथवा उदासीन हो गए? हम उदासीनता के तर्क से देखें, मन में क्या विचार आता है? जब किसी समस्या को देखते हैं तो दूसरी ओर देख लेते हैं। भले समारी के दृष्टांत की याद करें, वह बेचारा व्यक्ति लुटेरों के द्वारा घायल जमीन पर पड़ा, जीवन और मृत्यु के बीच वहाँ अकेला पड़ा था। वहाँ से एक याजक गुजरा, उसे देखा और पार हो गया। दूसरी ओर देखते हुए वह चला गया। एक लेवी भी गुजरा, वह उसे देखकर मुंह फेर लिया। संत पापा ने कहा,
यो davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno,
मैं अपने भाई बहनों के सामने जरूरत में क्या उन्हें उन याजक और लेवी के समान देखता और मुंह फेर लेता हूँ? इसी के आधार पर मेरा न्याय किया जाएगा कि मैं जरूरत में लोगों में उपस्थित यीशु को देख पाता हूँ। यही तर्क है। यीशु कहते हैं, जो तुमने उनके लिए किया वह मेरे लिए किया, और जो तुमने उनके लिए नहीं किया वह तुमने मेरे लिए नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ था। यीशु इस तर्क को सिखलाते हैं जो पड़ोसी का तर्क है, उनके नजदीक होने, प्रेम से उनके पास आने के लिए जो अधिक पीड़ित हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा, माता मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें सेवा में शासन करना सिखलाएं। मरियम स्वर्ग में उद्गृहित कर ली गईं, अपने पुत्र से राजमुकुट प्राप्त की, क्योंकि वे निष्ठापूर्ण उनका अनुसरण की। वे प्रेम के रास्ते पर चलने वाली पहली शिष्य हैं। आइए हम सभी उनसे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना सीखें, विनम्र और उदास सेवा के रास्ते से। और इस वाक्य के साथ हम घर लौटें, मैं वहाँ उपस्थित था, धन्यवाद, अथवा तुम मुझे भूल गए। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Concepit de Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं विनाशकारी भूकंप के 40 वर्षों बाद कंपानिया और बसिलिकाता के लोगों की विशेष याद करता हूँ, जिसके इरपिनिया में ऊपरी केंद्र थे और जिसने मौत और विनाश बोया। उस भयंकर घटना के 40 वर्ष बीत चुके हैं, उसके घाव अब भी चंगे नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए इटली की उदारता और एकात्मकता प्रकट हुई है। कई भूकंप प्रभावित देश और उत्तर और मध्य, जिनका संबंध अब भी है, इसका साक्ष्य देते हैं। इन प्रयासों ने पुनर्निर्माण के कठिन रास्ते को प्रोत्साहित किया है, सबसे बढ़कर महाद्वीप के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा को बढ़ाया है। तब संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप इस समय की कठिनाई के बावजूद नियमों का पालन करते हुए संत पेतुस महागिरजाघर के प्रांगण में आए हैं। उन सभी परिवारों का मैं विशेष अभिवादन करता हूँ जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन परिवारों की भी याद करता हूँ जो इस समय काम नहीं होने, नौकरी खो देने, जिनके एक या दो बच्चे हैं, कई बार लाज के मारे लोगों से गुप्त रखते हैं। आप ही हैं जो चाहते और जहाँ जरूरत है खोजते हैं। यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ जरूरत में है, उन्हें खोजते हैं। और अंत में संत पापा ने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
पर फवोरे नॉन डिमेंटिकातेवि डि प्रेगारे पर मे। बुन प्रांसो ए अरिवेडर्ची।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। दुनिया में मनुष्य का आगमन बिना वजह नहीं होता, वह ईश्वर के सपने को साकार करने के लिए इस दुनिया में आता है। संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी लोगों को ईश्वर के सपने को साकार करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, हम छुट्टियों या सप्ताहांत के बारे में सपने देखने के लिए नहीं, लेकिन इस दुनिया में ईश्वर के सपने को सच करने के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर ने हमें सपने देखने में सक्षम बनाया ताकि हम जीवन की सुंदरता को अपना सकें। जीवन में दया के कार्य सबसे सुंदर कार्य है। और संत पापा फ्रांसिस ने एक वीडियो संदेश में अर्जेंटीना के सभी डॉक्टरों और नर्सों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप इस महामारी के गुमनाम नायक हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन को बीमारों के करीब रहने के लिए दिया है। आपकी निकटता के लिए धन्यवाद, आपकी कोमलता के लिए धन्यवाद, व्यवसायिकता के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आप बीमारों की देखभाल करते हैं। अर्जेंटीना कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के स्वास्थ्य प्रेरितिक सेवा विभाग के अध्यक्ष मोनसिन्योर अल्बेर्टो द्वारा संत पापा के वीडियो संदेश को प्रसारित किया गया। 21 नवंबर को नर्सों का दिन मनाया गया था, साथ ही उसी दिन रोगियों की सहाई का माता मरियम का पर्व था। संत पापा ने कहा, गुरुवार 3 दिसंबर हालांकि डॉक्टरों का दिन है, मैं सभी डॉक्टरों और नर्सों के करीब रहना चाहता हूं, विशेष रूप से इस समय जब बीमारी हमें पीड़ित पुरुषों और महिलाओं के करीब होने के लिए बुलाती है। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को, आपके परिवारों को आशीर्वाद दें, आपके काम में, आपके साथ होने वाली सभी समस्याओं में आपका साथ दें। जैसा कि आप बीमारों के नजदीक हैं, ईश्वर आपके नजदीक हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपने लिए भी प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए अपना वीडियो संदेश समाप्त किया। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर में युवाओं के साथ क्रिस्त राजा महापर्व का समारोहिक क्रिस्तियाग अनुष्ठान करने के बाद घोषणा की कि उन्होंने धर्म प्रांतीय विश्व दिवस के उत्सव को खजूर रविवार से स्थानांतरित कर क्रिस्त राजा रविवार को मनाने का फैसला किया है। परिवर्तन की घोषणा करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, उत्सव का केंद्र मनुष्य के उद्धारक येसु मसीह का रहस्य है। विश्व युवा दिवस की शुरुआत करने वाले और संरक्षक संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने हमेशा इस पर जोर दिया था। धर्म प्रांतीय विश्व युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस के बीच के वर्षों में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस हर चौथे साल में संत पापा द्वारा चुने हुए स्थान पर होता है। सबसे हाल में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस 2019 में पनामा सिटी में आयोजित किया गया था। अगला विश्व दिवस लिस्बन में 2022 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 2023 में मनाया जाएगा। तिथि परिवर्तन की घोषणा करने के बाद विश्व युवा दिवस के प्रतीक क्रूस और सालुस पोपोली रोमानी माता मरियम रोमन लोगों की संरक्षिका की प्रतिमा को पनामा के युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने लिस्बन से आए युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल को सौंपा। इसे संत पापा फ्रांसिस ने एक महत्वपूर्ण समारोह के रूप में वर्णित किया। संत पापा फ्रांसिस ने क्रूस और आइकन सौंपने के औपचारिक समारोह से पहले अपनी टिप्पणी में मसीह के सुसमाचार के शब्दों को याद करते हुए कहा, प्रिय युवाओं, आप अपने जीवन से उद्घोषणा करें कि मसीह जीवित हैं और शासन करते हैं। यदि आप चुप रहेंगे तो पत्थर भी इसकी घोषणा करेंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों के लिए एक वीडियो संदेश भेजा। उन्होंने आभासी रूप से भाग लेने वाले युवाओं को उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के लिए बधाई देते हुए अपना वीडियो संदेश शुरू किया। उन्होंने कहा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है जो आपको खुशी देता है, आपको परेशान करता है, आपको नाराज करता है और आपको बदलने के लिए प्रेरित करता है। 19 से 21 नवंबर तक असीसी में फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था बैठक के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने याद किया कि मूल विचार असीसी के संत फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलने के लिए मिलना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बैठक स्थगित कर दी गई और यह ऑनलाइन आयोजित की गई। संत पापा ने उल्लेख किया कि संत फ्रांसिस को एक मिशन सौंपा गया था और इसलिए मेरे लिए असीसी में आभासी बैठक आगमन का एक बिंदु नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया का प्रारंभ है। हम अपनी बुलाहट, संस्कृति और संधि को जीने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। मुझे पता है कि आपने इस बुलावे को तुरंत स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आप इस तरीके को देखने, विश्लेषण करने और अनुभव करने में सक्षम है। साथ ही संत पापा ने चेतावनी दी कि वे शहरों और विश्वविद्यालयों में, ट्रेड यूनियनों में, कंपनियों और आंदोलनों में, सार्वजनिक और निजी कार्यालय में बुद्धिमत्ता, प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ एक ठोस प्रभाव बनाने के लिए बुलाए गए हैं। संत पापा ने कहा, आप बाहर नहीं जा सकते जहां वर्तमान और भविष्य उत्पन्न होता है। या तो आप इसमें शामिल होते हैं या इतिहास आपके ऊपर से गुजर जाएगा। संत पापा ने ध्यान दिलाया कि आज सामान्य भलाई के बारे में सोचते हुए हमें एक अपरिहार्य तरीके से राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। संवाद में खुद को निर्णायक रूप से जीवन की सेवा, विशेष रूप से मानव जीवन पर रखें। समान रूप से वितरण हेतु आम धन में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं है। मनुष्यों को, पृथ्वी को मनुष्यों के लिए रहने योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना भी पर्याप्त नहीं है। संत पापा ने कहा, क्रेडिट सिस्टम अकेले गरीबी और निर्भरता का मार्ग है। उन्होंने बताया कि यह वैध विरोध अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का एक मॉडल की उत्तेजना और संगत की मांग करता है। इतिहास सिखाता है कि कोई ऐसी प्रणाली नहीं है और न ही ऐसी क्षमता जो पूर्णता और रचनात्मकता को रद्द करने में सक्षम है। ईश्वर दिलों में नई भावनाओं को जगाना बंद नहीं करते हैं। आप डरे नहीं, येसु की निगाहों से शहरों की आत्मा को छूने के लिए शामिल होवें। हिम्मत के साथ संघर्ष और इतिहास के चौराहे पर आगे बढ़ें, ताकि आपको प्रभु के आशीर्वचन की सुगंध से अभिषेक मिले। कोई भी अकेला खुद को बचा नहीं सकता। इस आर्थिक संस्कृति को जीवन देने के लिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।